नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और प्रेमी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, मुझे आशा है कि आप सब प्रभु की कृपा से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं। पिछले अध्ययन में हमने कफरनहूम में यीशु की सेवकाई का आरंभ और शिष्यों को बुलाने के विषय में देखा था। हम इस अध्याय में यीशु के पहाड़ी उपदेश पर विचार करेंगे। तो अपने मन और दिल को आप तैयार करें और परमेश्वर से सामर्थ मांगें कि हम उसके वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। तो आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करें। हम इस अध्ययन में पहाड़ी उपदेश का प्रारंभ, जो राज्य के विषयों का संबंध स्वयं के साथ तथा व्यवस्था के साथ दर्शाता है। आइए हम पहाड़ी उपदेश के परिचय को देखें। यद्यपि हम पहाड़ी उपदेश के प्रत्येक अध्यायों को अलग अलग देखेंगे, फिर भी आइए हम इसे पहले पूरा देखें। प्रभु यीशु ने चार बड़े प्रवचन दिए हैं और मत्ती उनमें से तीन को यहाँ पर लिखता है। पहला पहाड़ी उपदेश अध्याय 5-7 तक, दूसरा भेदपूर्ण दृष्टांतों का उपदेश अध्याय 13 और तीसरा जैतून से उपदेश अध्याय 24-25। मित्रों, पहाड़ी उपदेश राजा का एक घोषणा पत्र है। भेदपूर्ण दृष्टांत दिशा को देते हैं कि स्वर्ग का राज्य यीशु के तिरस्कार होने के बाद ले लिया जाएगा। जैतून का उपदेश भविष्यवाणी है, जो भविष्य की ओर देख रहा है। एक चौथा उपदेश भी है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया है, जो नई सच्चाई और संबंधों के विषय के साथ यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण और मध्यस्थता को दर्शाता है। मैं और आप भी इस उपदेश के बाकी हिस्से के साथ अपने जीवन में जुड़े हुए हैं। जबकि पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार 5-7 में है और उसका सारांश दूसरे सुसमाचारों में भी देखने को मिलता है। यह निराशजनक है कि हमारे प्रभु ने इसे सिर्फ एक बार ही दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बड़े सत्य के विषय में उसने दोहराया है जिसे उसने दिया था, और संभवतः उसने यही संदेश दिया जिसे आज हम इसे कई बार या कई अवसरों पर पहाड़ी उपदेश कहते हैं। लूका इसके एक भाग को भी लिखते हैं और सच्चाई को बताते हैं कि हमारा प्रभु नीचे आया और समतल में खड़ा हुआ, जो यह संकेत देता है कि यह कोई दूसरा अवसर था। स्पष्ट रूप से कहूं कि मत्ती का लेख संभवतः पहाड़ी उपदेश का सिर्फ हिस्सा है। मैं विश्वास करता हूं कि जितना हमारे पास यहां पर है, हमारे प्रभु ने उससे कहीं अधिक उपदेश दिए हैं। जो भी हो, आज यह हमारे सीखने और समझने के लिए दिए गए हैं। मित्रों, दो बातें हैं जिसे मैं परिचय के तरीके से इस भाग में कहना चाहता हूं। एक बात है कि दाई ओर की दूरी और बाई ओर की दूरी राजनीति से नहीं जुड़ी है, परंतु धर्म विज्ञानियों के लिए जो शास्त्र की व्याख्या करते हैं, हम में भी पूरी तरह दाई और बाई दूरी पाई जाती है। यह स्पष्ट रूप से पहाड़ी उपदेश की समझ में प्रकट किया गया है। उदारवादी धर्म विज्ञानी दाई दूरी पर हैं। वह पहाड़ी उपदेश को एक सुसमाचार के रूप में देखते हैं, जो एक शुभ संदेश है। इस प्रकार से दिखाते हैं मानव शास्त्र में यही एक महत्वपूर्ण भाग है। मित्रों, कई वर्ष पूर्व मेरा एक मित्र था जो उदारवादी प्रचारक था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं उसे बाइबल दूं और उसे सिर्फ पहाड़ी उपदेश की आवश्यकता है। वह इतना आगे बढ़ गया कि उसने कहा उसे सुनहरा नियम चाहिए, जो मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसके 12 में लिखा है। इसलिए जैसा कि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और नबी यही सिखाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से कहा जाए कि यह सब बाइबल है जिसकी आवश्यकता आपको है, जिसे सुनने में अच्छा लगता है, परंतु यह धर्मनिष्ठ बकवाद है। प्रश्न यह नहीं है कि आप पहाड़ी उपदेश को अपने धर्म के रूप में महसूस कर रहे हैं या नहीं। प्रश्न है कि क्या आप इसके अनुसार जी रहे हैं या क्या इसके अनुसार आप चल रहे हैं। यही महत्वपूर्ण बात है, और इसके बारे में कहने के लिए बाद में हमारे पास बहुत कुछ है। मित्रों, जो लोग मसीही संदेश को पहाड़ी उपदेश में कम करते हैं, वे लोग आज एक बड़ी मात्रा में उतारवादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कृपया ध्यान दीजिए कि मसीही सुसमाचार का सारांश पहाड़ी उपदेश में नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए देखें, यहाँ पर यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। फिर भी पौलुस ने कुरिन्थवासियों से कहा, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ। सुसमाचार क्या है? क्या पहाड़ी उपदेश है? जी नहीं, पौलुस ने इसे स्पष्ट कर दिया कि सुसमाचार यह है, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रिय मित्रों, सुसमाचार पहाड़ी उपदेश में नहीं है, और यही कारण है कि बहुत से लोग दावा करते हैं कि यह उनका धर्म है। आज इस प्रकार के सिद्धांतों के प्रचार ने कलीसियाओं को और कलीसियाओं में और अधिक पाखंडे या ढोंगियों को तैयार किया है, जो किसी अन्य बातों के द्वारा नहीं। यह संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य के कहने के लिए यह शब्दांडंबर है कि मैं पहाड़ी उपदेश के द्वारा जीता हूं। यदि एक मनुष्य ईमानदार है और वह पहाड़ी उपदेश को पढ़ेगा, तब वह जानेगा कि वह उस संदेश के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है। मेरे प्रिय मित्र, यदि पहाड़ी उपदेश परमेश्वर का स्तर है और आप इसमें कमजोर पाए जाते हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आपके पास मुक्तिदाता है जो आप पर ध्यान दे? क्या आप किसी एक को जानते हैं जो अनुग्रह में नीचे पहुंचकर और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो वह आपको उधार देता है? मसीह संदेश को पहाड़ी उपदेश में बदलना एक मूर्खता है, जिसे पवित्र शास्त्र किसी भी परिस्थिति में बदलने की अनुमति नहीं दे सकती है, चाहे कुछ भी हो, क्यों ना हो जाए। ऐसा करना किसी एक दृष्टिकोण की चरम सीमा तक पहुंचना होगा। एक और दृष्टिकोण है जो दूसरी ओर की चरम सीमा पर जाता है। यह समूह या पक्ष पहाड़ी उपदेश को इस प्रकार से देखता है जैसे कि यह कोई गिल्टी की महामारी हो। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वे ऐसा दर्शाते हैं मानो इसमें नैतिक रूप से कुछ गलत है। यह समूह हाइपर डिस्पेंसनलिस्ट के नाम से जाना जाता है। कृपया गलत न समझे, मैं भी छुटकारे के सिद्धांत को मानने वाला हूं, लेकिन उसके विषय में अति व्यवस्थापक नहीं हूं। वे इस बात को बनाए रखते हैं कि हम पहाड़ी उपदेश का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। यहां तक कि उस मत के एक व्यक्ति ने कहा कि आज हमारे लिए प्रभु की प्रार्थना कोई मायने नहीं रखती है। बोलने वाला एक प्रचलित व्यक्ति था और उसके मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद किसी ने पहाड़ी उपदेश और प्रभु की प्रार्थना की एक श्रृंखला बना दी और उसने एक पुस्तक का शीर्षक आइए हम प्रार्थना करें रखा, जो प्रभु की प्रार्थना के विषय में बताता है। प्रभु की प्रार्थना हमारे लिए आज के दिनों में भी अर्थ रखती है। यह हमारे लिए है यद्यपि यह हमारी नहीं है, परंतु द्विपक्षीय इस पूर्ण रीति से दूर करना चाहता है। मित्रों, यह सच है कि पहाड़ी उपदेश में सुसमाचार नहीं है, और वास्तव में यह दुखपूर्ण है कि इसे एक उधार ना पाए हुए व्यक्ति को आचार व्यवहार के स्तर के लिए दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि यदि वह इसका सही रीति से पालन करता है तो वह एक मसीही है। मित्रों, पहाड़ी उपदेश व्यवस्था को बहुत ऊंचे पर उठाता है। पुराने नियम में मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं कर सका, तो वह इस संसार में कैसे इस व्यवस्था का पालन अपनी शक्ति से कर सकता है? जबकि पहाड़ी उपदेश तो उससे भी अधिक और ऊंचे स्तर पर उठाया हुआ है। उसी प्रकार यह सही है कि पहाड़ी उपदेश में मसीही जीवन के लिए वास्तव में कोई कार्य प्रणाली नहीं मिलती है, पर यह बिना गतिशीलता दिए ही नैतिक शिक्षा देती है। हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा के निवास की सामर्थ्य के द्वारा जीवन जीना ही एक सच्चाई नहीं है जो पहाड़ी उपदेश में सिखाई गई है। पौलुस रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसके 3 और 4 पद में कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप को दोषी ठहराया, जिससे कि व्यवस्था की मांग हम में पूरी हो सके जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। मित्रों, आप इस प्रकार की शिक्षा पहाड़ी उपदेश में नहीं पाते हैं। उसमें पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में कुछ भी नहीं है। जो भी हो, इसमें उच्च नैतिक स्तर और इसका अभ्यास है, जो वास्तव में मसीही जीवन के विरोध में नहीं है। वास्तविक रूप में यह यीशु के मनोभाव को व्यक्त करता है। यही मनोभाव मसीहियों का भी होना चाहिए। यहाँ पर महान सिद्धांत मसीहियों के लिए रखे गए हैं, अध्ययन करने और सीखने के लिए लाभदायक हैं, परंतु वह अपनी सामर्थ्य से इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। सामर्थ्य पाने के लिए उसे कहीं जाना चाहिए। मित्रों, पहाड़ी उपदेश में आपके पास एक अद्भुत बिजली का बल्ब है, परंतु आपके पास बिजली उत्पन्न करने के लिए जनरेटर नहीं है ताकि प्रकाश दे सके, और प्रकाश महत्वपूर्ण है और बल्ब नहीं। मित्रों, पहाड़ी उपदेश का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के सामने राज्य की व्यवस्था को रखना है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके आगे आगे चलने वाला था, और राजा ने शिष्यों को बुलाया कि वे उसका अनुसरण करें, उसके पीछे चलें। अब वह राज्य की व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। यह राजा का घोषणा पत्र है और शांति के राजकुमार के लिए मंच है, और यह व्यवस्था है। 1000 साल के शासन काल में संसार की व्यवस्था यही होगी, और तब यह पूरी सफलता को प्राप्त करेगी। मसीह इस पृथ्वी पर व्यक्ति के रूप में शासन करेंगे और इसके सभी शब्दों को लागू करेंगे। पहाड़ी उपदेश अंत में प्रबल होगा जब जिसे राज्य करने का अधिकार है वो आएगा और शासन करेगा तब। अब यह मेरे लिए अकल्पित है कि जो कोई आज उसे प्रभु कहकर स्वीकार करता है वह इस प्रलेप का तिरस्कार करे या इससे फिर जाए। मसीही व्यक्ति जो यीशु मसीह को प्रभु कहता है वह उसकी आज्ञाओं का पालन करने की चेष्टा करेगा, परंतु वह केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर ही इसका पालन कर सकता है। मित्रों, खंडन करने वाले और विद्रोही संसार पर पहाड़ी उपदेश को लागू करने की कोशिश करना व्यर्थ से भी बदतर और बुरा है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार ही मनुष्य को मसीह का आज्ञाकारी बनाता है, और यह इसलिए दिया गया है कि मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लाया जाए। पहाड़ी उपदेश का मनुष्यों के हृदय में विश्वास लाने के लिए प्रचार करने की आवश्यकता है। यह प्रतिलेख मनुष्य को यह बताता है कि उन्होंने पाप किया है, और यह भी प्रकट करता है कि कोई भी धर्मी नहीं है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मसीही लोग इस सिद्धांत को ले सकते हैं जो पहाड़ी उपदेश में दिए गए हैं, और दूसरे वचनों के प्रकाश में इसे स्वीकार कर सकते हैं जो मसीह के मन की अच्छी समझ और विशाल दृष्टिकोण को उपलब्ध कराएगी। उदाहरण स्वरूप, हत्या और व्यभिचार के विषय में मसीह की परिभाषा केवल यही पर पा सकते हैं। मसीह ने 2 आज्ञाओं को लिया और उन्हें उच्च स्तर पर उठाया, तू हत्या न करना और तू व्यभिचार न करना, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पाते हैं। मित्रों, क्या ये 2 ही हैं जिन्हें उसने अधिक ऊंचे स्तर पर उठाया? इसका उत्तर है जी हाँ, यही सच है। यही 2 हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखी गई है। स्पष्ट रूप से उसने ऐसा ही किया, या वह प्रत्येक आज्ञाओं को एक उच्च स्तर तक उपलब्धि दिला सकता था। यदि ऐसा है तो इसे मूसा की व्यवस्था कहा जाता। गलतियों के पत्र 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। मित्रों, तब तो यह मनुष्य के लिए 10 गुना और कठिन बात होती कि वह पहाड़ी उपदेश के द्वारा धर्मी ठहराया जाए। अपने जीवन को इन 2 आज्ञाओं के अधीन रखने की कोशिश करें कि तू हत्या ना करना और तू व्यभिचार ना करना। मैं एक छोटी कहानी के द्वारा बताना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। एक बार एक प्रचारक को किसी कलीसिया में संदेश या वचन देने के लिए बुलाया गया। जिस कलीसिया में उसे बुलाया गया था वहां का सेवक भी बहुत सम्माननीय व्यक्ति था। वह एक बैंक का उपसभापति भी था। उसने बुलाए हुए प्रचारक से एक छोटा संदेश देने के लिए कहा, और इस प्रकार से कहा, आपके पास अधिक समय नहीं है परंतु कुछ ही मिनट हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इन व्यापारियों को शुभ संदेश या सुसमाचार दें। वह प्रचारक उस स्थान पर समय से पहले पहुंचा और चारों ओर बहुत से लोग खड़े थे। वह प्रचारक के स्थान के पास गया और वहां एक व्यक्ति था जिसने उससे हाथ मिलाया और उसने बहुत गलत बोलना शुरू कर दिया। प्रचारक ने ऐसे सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से गंदी बातें बोलते हुए कभी नहीं देखा था जैसे कि वो कह रहा था। अंत में उसने प्रचारक से कहा, आपका क्या व्यवसाय है? प्रचारक ने उसे बताया कि वह एक वक्ता है। तब वह व्यक्ति तुरंत बातों को बदलने लगा। उसने अपनी गंदी या गलत भाषा के लिए माफी मांगी, लेकिन उस व्यक्ति को प्रचारक से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसे तो परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर हर समय उसकी बातों को सुनते हैं, जिसे प्रचारक ने उसे कहा। तब उस व्यक्ति ने बताया कि वह उदारवादी कलीसिया का उच्च स्तरीय सदस्य था और पहाड़ी उपदेश उसका धर्म है, इस पर उसे घमंड था। अच्छा, तो आइए हम हाथ मिलाएं। आपने अच्छा धर्म पा लिया है और बधाई हो। जो भी हो, आप उसके साथ कैसे चल रहे हैं? उसने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा कि पहाड़ी उपदेश मेरा धर्म है, तो क्या आप उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं? जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह काफी कठिन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, धन्य है वे जो इसका पालन करते हैं। उसने यह नहीं कहा कि जो इसके लिए वोट करते हैं। क्या आप इसका पालन करते हैं? हाँ, मैं सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं। क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे यदि मैं आपकी एक छोटी परीक्षा लूं तो? ठीक है, पहाड़ी उपदेश कहता है कि यदि तू अपने भाई पर क्रोधित होता है तो तू हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहरता है। क्या आप इस बात का पालन कर रहे हैं? यह बहुत ठोस बात है, परंतु मैं नहीं सोचता कि मैं कभी इतना क्रोधित हुआ हूं कि मैं किसी की हत्या करूं। तब प्रचारक ने दूसरे पद का उदाहरण दिया जिसे प्रभु यीशु ने व्यभिचार के विषय में कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 5:28 में। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रचारक ने उसे पूछा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? ओह, ऐसा लगता है कि यह मुझे पकड़ लेगा। प्रचारक ने कहा, मैं सोचता हूं कि पहाड़ी उपदेश में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें पकड़ेगी। स्पष्ट रूप से तुम अपने धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हो। प्रचारक ने कहा, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं अपने धर्म को बदल देता और उसको लेता जिसका पालन मैं कर सकता। मित्रों, बहुत से लोग इस व्यक्ति के समान हैं। वे बड़े धर्मी होकर कहते हैं कि पहाड़ी उपदेश उनका धर्म है, परंतु उनकी सोच का मतलब है कि यह बहुत अच्छा प्रतिलेख है और एक सुंदर अभिव्यक्ति है, परंतु यह उन पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं डालता। बाद में यह पता चला कि प्रचारक जिस व्यक्ति से बात कर रहा था उसकी दो पत्नियां थी, एक घर में और दूसरी दफ्तर में। मेरे प्रिय मित्रों, यदि पहाड़ी उपदेश आपका धर्म है तो आप निश्चय कर लें कि आप इसका पालन कर रहे हैं। यह व्यवस्था से भरा है, परंतु यदि आप पहाड़ी उपदेश का पालन ईमानदारी से करते हैं तो वह आपको मुक्तिदाता के पास लाएगा जो आपके लिए क्रूस पर मरा, अर्थात बलिदान हुआ। पहाड़ी उपदेश हमारे सामने एक बड़े सिद्धांत, एक बड़े लक्ष्य को रखता है। हमें उन्हें जानने की आवश्यकता है, परंतु वे प्रकट करते हैं कि हम कहां पर कम हैं। मुझे भरोसा है कि मत्ती का लेख जो पहाड़ी उपदेश पर है, मसीह के वास्तविक संदेश का एक सिर्फ रूपरेखा है। मैंने इसे इस प्रकार से विभाजित किया है। पहला, राज्य में संबंधित विषयों का स्वयं के साथ संबंध, मत्ती रचित सुसमाचार 5:1-16। दूसरा, राज्य से संबंधित विषयों का व्यवस्था के साथ संबंध, मत्ती रचित सुसमाचार 5:17-48। तीसरा, प्रजा का परमेश्वर के साथ संबंध, मत्ती रचित सुसमाचार 6। और चौथा है, प्रजा का दूसरों के साथ संबंध, मत्ती रचित सुसमाचार 7। मित्रों, पहाड़ी उपदेश धन्य वचन के साथ आरंभ होता है। इसे ध्यान देना चाहिए कि ये धन्य वचन है, न कि करने के वचन। वे इस बात को बताते हैं कि राज्य के विषय क्या हैं। वो धन्य वचन में वर्णित व्यक्ति के समान है या उसका वर्णन किया गया है। पद एक स्पष्ट करता है कि क्यों इसे पहाड़ी उपदेश कहा गया है। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि वास्तव में प्रभु ने यह पहाड़ी उपदेश भीड़ को नहीं दिया, उसने अपने शिष्यों को दिए, वे जो पहले से ही उसके थे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 5:1-2 में पढ़ते हैं जो राज्य के विषय का स्वयं के साथ संबंध के बारे में है। आइए हम इस पद में देखें। इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मित्रों, वास्तव में उसने पहाड़ी उपदेश भीड़ को नहीं दिए, उसने अपने शिष्यों को दिए, क्योंकि उसने भीड़ और उनकी आवश्यकताओं को देखा, इसलिए यह उपदेश अप्रत्यक्ष रूप से भीड़ को दिए गए। हमारे दिनों में सबसे पहले मनुष्य को मसीह के पास आने की आवश्यकता है, जबकि राज्य वास्तव में रुकी हुई अवस्था में है। वर्तमान समय की स्थिति यह है कि यह ऐसा है जहां पर बीज बोया जा रहा है और वह बीज परमेश्वर का वचन है। इस संसार में हमारा काम बीज बोना है और वो दिन आ रहा है जब मसीह अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। मित्रों, हम अतिरिक्त सुसमाचार 5 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मित्रों, यह वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है। यह नहीं बताता है कि मन में दीन कैसे बनना है, यह सिर्फ इतना कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है। इन 12 पदों में हमारे प्रभु ने धन्य शब्द 9 बार प्रयोग किए हैं और मजेदार बात तो यह है कि भजन संहिता 1 अध्याय के 1 में भी उसी शब्द से आरंभ होता है। धन्य है वह पुरुष, यह मूसा की व्यवस्था के बताए गए शाप वचन के विपरीत है। शायद आपको याद होगा कि यहोशू से कहा गया था कि जब वे यरदन नदी पार कर लें तो वे गेरेशेम पहाड़ पर लोगों को आशीष देने के लिए खड़े हों और तब एबाल पहाड़ से उन्हें श्राप दिया जाए। पहाड़ी उपदेश से आशीषें एबाल पहाड़ से श्राप के विपरीत है और वे गेरेशेम पहाड़ से दी गई आशीषों से बहुत आगे है, क्योंकि केवल मसीह ही उन आशीषों को ला सकते हैं। हमारे दिनों में सिर्फ उद्धार पाए हुए पापी ही मन की दीनता के बारे में जान सकते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है। मित्रों, पहाड़ी उपदेश लोगों को मन को दीन बनाने के बदले उन्हें घमंड करना सिखाता है। जैसे कि मैंने एक व्यक्ति के बारे में बताया था जो यह घमंड कर रहा था कि पहाड़ी उपदेश उसका धर्म है। वह मुझे और अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह यह सोचते हुए कि वह उसका पालन कर रहा है। वास्तव में वह इसका पालन नहीं कर रहा था, यह अपने आप को दिखाने का या पाखंड था। इस प्रकार के बहुत से लोग आपके चारों तरफ हैं। एक बार बहुत धनवान व्यक्ति ने मुझसे कहा, दूसरे पाखंडियों की तरह मैं भी कलीसिया में गया। मैं भी उनमें से एक था जो पहाड़ी उपदेश के पालन के बारे में कह रहा था। तब मैंने एक दिन पाया कि मैं नरक के रास्ते में एक खोए हुए पापी के समान हूं। तब मैं प्रभु यीशु की ओर फिरा और उसने मुझे बचा लिया। ओह मेरे मित्र, आप धोखा न खाएं। केवल परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपके मन को दीन बना सकता है या दीन होने के बारे में प्रकट कर सकता है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह नहीं बता रहे हैं कि वे कैसे स्वर्ग राज्य के नागरिक बन सकते हैं। वे पहले से ही राज्य के नागरिक थे। हम मसीही लोग आज वास्तव में मन में बहुत दीन हैं और हम सब आत्मिक रीति से दिवालिया हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हमारे पास देने के लिए सोने चांदी से बहुमूल्य कुछ है। पौलुस उसे इस तरीके से व्यक्त करता है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, शोकितों के सदृश परंतु सदैव आनंद मनाते हैं, कंगालों के सदृश परंतु बहुतों को धनी बना देते हैं, ऐसों के सदृश समझे जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं फिर भी हम सब कुछ रखते हैं। कंगालों के सदृश परंतु बहुतों को धनी बना देते हैं, यह आत्मिक धनी होने के बारे में कहता है। यह उन सब के लिए उपलब्ध है जो मसीह के हैं। अगला धन्य वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। मित्रों, मजेदार बात तो यह है कि धन्य वचन के यही विचार पवित्र शास्त्र के दूसरे हिस्सों में पाए जा सकते हैं जो मन के दीन है। यह सपन्या 3 अध्याय उसके 12 पद में भी मिलता है। मीका 7 अध्याय उन लोगों के बारे में उदाहरण है जो विलाप करते और जिन्हें सांत्वना दी जाती है। हम अतिरिक्त सुसमाचार 5 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। मित्रों, हम इसे भजन संहिता 37 उसके 11 पद में पाते हैं, जो नम्र लोग हैं वे आज जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके अधिकारी नहीं हो पा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी इसे मानते होंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से पहाड़ी उपदेश आज प्रभाव में नहीं है। जो भी हो, जब मसीह शासन करेगा तो नम्र लोग इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। आप नम्र कैसे बनेंगे? हमारा प्रभु नम्र और दीन था और वह सब पर उत्तराधिकारी होगा। हम सब परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के साथ उत्तराधिकारी होंगे। हमें बताया गया है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, दयालुता, विश्वासता, नम्रता व संयम है। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही आपको तोड़कर नम्र बना सकता है। यदि आप अपने शक्ति से नम्रता ला सकते हैं तो आप अपने पर घमंड करने लगेंगे। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? और आपकी नम्रता लुप्त होती जाती है। नम्रता अपने प्रयास से नहीं लाई जा सकती है, परंतु सिर्फ आत्मा के प्रयास के द्वारा ही आती है। केवल पवित्र आत्मा ही समर्पित मसीहों के हृदय में नम्रता ला सकता है। जिस मसीही व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करने के रहस्य को सीख लिया है, वो इन धन्य वचनों की ओर फिरकर इन्हें पढ़ सकता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और आप देखें कि नम्र होने के प्रतिफल अभी भी भविष्य में है। पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों से पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है। मित्रों, धन्य वचन लक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं जिसे परमेश्वर के बच्चे अपने जीवन में पहचाना चाहते हैं, परंतु वह अपने से नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने प्रचारक के विषय में सुना होगा जिसका संदेश था नम्रता, और मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? उसने कहा कि उसने अपना संदेश अभी नहीं दिया है, परंतु जैसे ही वह एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी वह उसे देगा। मेरी यह धारणा है कि उसने नम्रता को खोए हुए काफी समय बिता चुके हैं, क्योंकि नम्रता सिर्फ पवित्र आत्मा का फल हो सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर आज हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए हम अपने इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप इस धन्य वचन पर अवश्य विचार करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु आपकी सहायता करे, ताकि आप उससे अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जाने और आप भी नम्र और दीन बन सकें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्यवचन। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल एवं नया नियम उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, 9958820414। आप हमें ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह है प्यार का खुदा, मेरा मसीह है प्यार का खुदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जमीन
कुछ भी नहीं,
ये आसमान
कुछ भी नहीं,
ये बंदगी
कुछ भी नहीं,
ये जिंदगी
कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।